हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक नंबर 1, 2 एंड 3। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए कृपा की आवश्यकता है, तो गुरु और गौरंग से प्रार्थना करते हुए, कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद 7वां अध्याय, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक नंबर 1। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुतवांस्तद् अभिप्रेतं ततः किमकरोत् विभू। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुतवांस्तद् अभिप्रेतं ततः किमकरोत् विभू। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुतवांस्तद् अभिप्रेतं ततः किमकरोत् विभू। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तद् अभिप्रेतम् ततः किमकरोत् विभुः निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तद् अभिप्रेतम् ततः किमकरोत् विभुः। शब्दों का अर्थ। शौनक उवाच। श्री शौनक ने कहा, निर्गते चले जाने पर नारदे नारद मुनि के सूत हे सूत भगवान सर्वशक्तिमान बादरायण वेदव्यास ने श्रुतवान सुना तत् उसका अभिप्रेतम मन की इच्छा या मनोवांछा ततः तत्पश्चात किम अकरोत् क्या किया विभु महान ने। अनुवाद। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत जब महान तथा दिव्य शक्तिमान व्यास देव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास देव ने क्या किया। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम के वर्णन किए जाने का संकेत मिलता है, क्योंकि महाराजा परीक्षित अपनी माता के गर्भ में चमत्कारी ढंग से बच गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रौणी यानी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंड किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यास देव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी। शब्दोपाद की जय हो। मुखं गुरु तुवाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुंदीनतारणम्। जैसा कि हमने पढ़ा श्रीमद् भागवतम के अभी छठे अध्याय में कि नारद मुनि वेद व्यास जी को अपने जन्म और कर्म की समस्त बातें बताने के बाद चले गए और उनको एक आदेश देकर गए कि आपको क्या करना है। भगवान की जो आपने अभी तक दूसरे जितने भी शास्त्र लिखे हैं उनमें जो भगवान के बारे में नहीं लिखा, अभी आपको एक ऐसे शास्त्र जिस शास्त्र में केवल भगवान के प्रेम की लीलाएं हो, भगवान के विषय में हो, जिसको पढ़कर जीव के हृदय में भगवान के लिए जो सोया हुआ प्रेम है वो जाग उठे। तो अब व्यास देव क्योंकि उस ग्रंथ की रचना करने के, क्योंकि अभी आदेश दिया है तो उस ग्रंथ की रचना करने के लिए ही आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है द्रोण पुत्र को दंड। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि इससे पहले से ही सूचित हो रहा है कि इस अध्याय में, कि श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम के वर्णन किए जाने का संकेत मिलता है। क्यों? क्योंकि भागवतम किसको सुनाई गई थी? परीक्षित को। अब परीक्षित को क्यों, जब है ना परीक्षित के जन्म लेने के पहले कथा होगी, उसके बाद उसके मरने का श्राप आएगा ना, तो जन्म लेने के टाइम पर क्या हुआ था, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने उनकी माता उत्तरा के गर्भ पर जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था महाभारत के युद्ध के बाद, जब द्रौपदी के 500 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला था और अर्जुन ने जब उसे दंडित किया था तो बहुत क्रोध में हो गया था और फिर उसने उत्तरा के घर पर ब्रह्मास्त्र का वार किया था और भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। तो अब परीक्षित महाराज की बात से स्टार्ट होगा, क्योंकि भगवान की भक्त की जब बात आती है तो वो डायरेक्ट से जाती है भगवान के पास, और जब भक्त के ऊपर रुकता है, जब द्रोण पुत्र को दंड, यानी कि उनके द्रोण पुत्र ने क्या किया था, उनके भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार किया था, और फिर उसके बाद ही परीक्षित महाराज का जन्म होगा, और उसके बाद श्रीमद् भागवतम, उनको श्राप मिलेगा और श्रीमद् भागवतम सुनाई जाएगी। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये संकेत है। तो आज शौनक को उवाच, शौनक मुनि कौन है याद है आपको? हम लोगों ने जब प्रथम अध्याय पढ़ा था उसमें जब सारे जो शौनक आदि जितने भी ऋषि मुनि थे, 88,000 ऋषि मुनि, वो एक जगह पर एकत्रित हुए थे। कहाँ पर? 1.1.4 में हमने पढ़ा था, याद है? नैमिष निमिष क्षेत्रे विषयः शौनकादय सत्तम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। के नैमिषारण्य तीर्थ पे जो 88,000 ऋषि और शौनक जी जिनमें प्रधान थे, वो एक साथ एकत्रित हुए थे यज्ञ करने के लिए, और वहां पर अचानक से सूत गोस्वामी आ गए थे। तो उन्होंने यज्ञ को छोड़ दिया था और सूत गोस्वामी से प्रश्न करने शुरू कर दिए थे, जिनमें ये एक प्रश्न था अंतिम के भगवान के जाने के बाद धर्म की रक्षा किसने की। तो भगवान अभी, क्योंकि वो धर्म की रक्षा किसने की? भागवतम ने। धर्म को, धर्म किसके हाथ में है? भागवतम की, क्योंकि जो भागवतम पढ़ेगा वही धर्म। धर्म क्या है? भगवान को स्मरण करना, भगवान से प्रेम करना। तो फिर अभी दूसरा सवाल क्या आया था बाद में, हमने पढ़े थे कि भागवतम की रचना किस प्रकार हुई। तो अब शौनक आदि जब उस प्रश्न के उत्तर में नारद जी की कथा भी आई, और नारद मुनि ने जब पूरा उनको बता दिया और उसके बाद वो चले गए, अब शौनक मुनि वापस से सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? निर्गति नारदे सूत। निर्गति मतलब जब चले गए कौन? नारदे। वो कह रहे हैं जब नारद मुनि चले गए, हे सूत गोस्वामी, जब नारद मुनि चले गए भगवान बादरायण। भगवान का मतलब है अनंत ज्ञान, जिनके पास अनंत ऐश्वर्य हो, अनंत ज्ञान हो, अनंत वैराग्य हो, अनंत सुंदरता हो, अनंत धन हो, अनंत शक्ति हो। तो यहाँ पर बादरायण जी को, बादरायण जानते किसको बोलते हैं? बद्र का मतलब होता है बेर, और बेरों का समूह, अगर बहुत ज्यादा बेरों के वृक्ष हो उसको बोलते हैं बादर, ठीक है। और अयन कहते हैं आश्रम, यानी एक ऐसा आश्रम, बद्री आश्रम, इसको बद्री आश्रम भी बोलते हैं, बद्रा, और बद्री आश्रम में जो रहता है उसको बादरायण बोलते हैं। और बद्री का आश्रम में कौन रहते हैं? वेद व्यास जी। ये जो बादरायण जो शब्द है वो वेद व्यास जी के एक गुण को प्रकाशित करता है, अर्थात ये तपस्या का सूचक है कि वेद व्यास जी भले भगवान के शक्तियावेश अवतार थे, परंतु उन्होंने कोई एसी रूम में बैठकर ये सारे शास्त्र नहीं लिखे हैं, ना ही कोई इतना हाई फाई जगह पर बैठ कर के भाई हाँ भगवान का अवतार है तो रिलैक्स होकर। आश्रम बादरायण या बद्री का आश्रम का मतलब होता है कि परिश्रम करने वाले की जगह, जहाँ पर बहुत ज्यादा परिश्रम। आजकल कोई थर्ड क्लास का साधु भी होगा तो भी उसका आश्रम होगा बड़ा सा, जहाँ पर वो आराम से एसी रूम में बैठेगा और डिस्कस करेगा भाई ये उसका आश्रम है यहाँ पर। फिर आश्रम का मतलब होता है जहाँ पर वो आराम करता है, लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी की तपस्या के विषय में बता रहे हैं कि वो भगवान है, कोई साधारण नहीं है, फिर भी रहते कहाँ है? बेरों के जंगल में, जहाँ पर वही बेर का जंगल ही जिनका आश्रम है बादरायण, और वहां पर उनके आश्रम में वो बैठे थे, और वहीं पर नारद मुनि, यानी ये नारद मुनि और वेद व्यास जी के बीच में जो ये कन्वर्सेशन हुई थी वो कहीं पर, ऐसा नहीं कि दो भगवान की शक्तियां में अवतार आए हैं और एक दूसरे को एक अच्छे से बाग में लेकर गए हैं, वहां पर रिलैक्स होकर टॉकिंग कर रहे हैं और इधर से बात नहीं, वो तपस्या करने की। वेद व्यास जी भगवान के अवतार होने के बावजूद भी इतने दुखी थे कि मैं कर नहीं पाया, मेरा वास्तव में वेद व्यास जी का अवतार हुआ है क्यों? भागवतम को लिखने के लिए, क्योंकि भगवान जानते थे कि मेरे जाने के बाद भागवतम ही एक ऐसा शास्त्र होगा जो कि जीवों को मुझसे प्रेम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो भगवान ने वेदव्यास जी को का स्वरूप धारण किया, उनके रूप में आए, लेकिन अभी तक उन्होंने किया नहीं था, इसलिए वो शक्ति आवेश अवतार भी दुखी थे। वास्तव में वो हमें दिखाना चाहते हैं कि जब तक जीव भागवत की शरण नहीं लेगा तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता, तब तक जीव के हृदय में आनंद प्राप्त नहीं हो सकेगा। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि गायन मध्यान्निदं तंत्र्या रमयत् यातुरं जगत्, कि केवल भगवान की लीलाओं का गुणगान को गाने की और श्रवण करने के बाद ही जीव संतुष्ट हो सकता है। तो आज बता रहे हैं निर्गते नारदे सूत, हे सूत गोस्वामी, भगवान बादरायण, जब नारद मुनि चले गए तो बादरायण भगवान ने श्रुतवंस तद अभिप्रेतम, श्रुतवंस मतलब सुना, उन्होंने उनका क्या सुना, अभिप्रेतम, अभिप्रेतम मतलब उनके जो मन की इच्छा थी। नारद मुनि के मन की इच्छा क्या थी? नारद मुनि ने उनको कहा था कि देखो, तुमने जो शास्त्र लिखे हैं उनसे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, उनसे तो और भी जो जिनकी इच्छा पहले से ही काम वासनाओं को पूरे करने की है वो और भी उसकी तरफ जाएंगे, तो आप क्या करो, भागवतम लिखो। जब उन्होंने ये इच्छा, हालांकि नारद मुनि वेद व्यास जी के गुरु हैं और उनको ये इच्छा अपनी बता के, समझो एक आदेश दे के गए हैं, अपना अभिप्राय बता के गए हैं, तो सोनक मुनि जो है वो सूत गोस्वामी से पूछे। अभी सोनक मुनि क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि याद है आपको 88,000 ऋषि थे, वो सब एक साथ बोल रहे थे, फिर बाद में सोनक मुनि को कहा गया था कि आप सबके बिहाफ में क्वेश्चन करोगे। क्यों? क्योंकि सोनक मुनि सबसे बड़े वृद्ध थे, कुलपति थे, भृगुवंशी थे, और उस समय वाइस चांसलर वही थे। तो नारद मुनि वो पूछ रहे हैं सबकी ओर से, मतलब वो पूछ रहे हैं कि नारद मुनि के अभिप्राय को सुनकर ततः किम करोत् विभु, वो विभु है, विभु का मतलब है कि वो महान है। अभी उन्होंने जो महान, कौन महान है? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के यहाँ पर तीन गुण बताए गए हैं, सबसे पहले कौन सा है? भगवान। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण, भगवान है यानी उनके पास समस्त शक्तियां, वो भगवान के अवतार हैं, और बादरायण से क्या सूचित कर रहे हैं कि वो भगवान के अवतार होते हुए भी तपस्या कर रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं। तो किम करोत् विभु, वो महान है, कोई साधारण नहीं है, तो वो महान है, तपस्वी है और समस्त ऐश्वर्यों के मालिक हैं। तो उन्होंने किया क्या उनके जाने के बाद, नारद मुनि के जाने के बाद आखिर क्या किया उन्होंने, उनका अभिप्राय जब सुन लिया, जब उन्होंने सुन लिया कि मेरे गुरु महाराज मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि अब मैं भागवतम की रचना करूं, तो उन्होंने क्या किया? अब सूत गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं श्लोक नंबर 2 में, कृपया मेरे साथ उच्चारण कीजिए। सूत उवाच ब्रह्मनाथ्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे शम्यापास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्यापास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः। शब्दकार्थ, सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, ब्रह्म नद्यम अर्थात वेदों, ब्राह्मणों, संतों तथा भगवान के घनिष्ठ संबंधित नदी के तट पर, एक ऐसी नदी है जहाँ पर ब्राह्मण, संत, भगवान के घनिष्ठ संबंध की ये नदी है, सरस्वती नदी जिसको कहते हैं, सरस्वत्याम सरस्वती के आश्रम ध्यान के लिए कुटी, यानी कि आश्रम का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर संत लोग ध्यान करते हैं, पश्चिमी तटे यानी तट पर शम्या प्रासह नामक स्थान, इति इस प्रकार प्रोक्तः कहलाने वाला ऋषिणाम ऋषियों का सत्रवर्धनम कार्यों को प्रोत्साहन करने वाला। अनुवाद, श्री सूत ने कहा, वेदों के घनिष्ठ संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्यप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को वर्धित करने वाला है। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद की जय हो। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहां पर शम्य प्रास में व्यासदेव का आश्रम है। श्री व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक संस्कृति अर्थात प्रगति सर्वोपरि होती है। फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का, संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृत सम्मान रूप से रहती है। सारे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी एक ही जीवन लक्ष्य परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित है। अतएव जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सारे सन्यासी अपने व्यावहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। जब शौनक मुनि ने प्रश्न पूछा तो सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। वे कहते हैं, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, यानी कि सरस्वती के पश्चिमी तट पर आश्रम, पश्चिमी तट पर वेद व्यास जी का एक आश्रम है, यानी वो अत्यंत ही सुंदर, उसका नाम है सम्यक। आगे बताया, शम्य प्रासह नाम का एक आश्रम है जहाँ पर क्या होता है, वो सदैव जितने भी ऋषि मुनि हैं, शम्य प्रासह इति प्रोक्त, उसे कहा जाता है, उस आश्रम का नाम है शम्य प्रास, उसको कहा जाता है। और वहां पर क्या करते हैं, ऋषिणाम सत्रवर्धनम। सत्रवर्धनम का मतलब होता है कंटिन्यूअस वहां पर भक्ति चलती है। सत्र का मतलब होता है कि सदैव कार्यों को, यानी कि भक्ति कार्यों को सदैव प्रोत्साहन मिल जाता है। नया नया कुछ न कुछ चलता रहता है, सत्र चलता रहता है, निरंतर भक्ति चलती रहती है। और भक्ति का मतलब भी यही होता है, जैसे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, अहितु की अप्रतिहिता। अप्रतिहिता मतलब उसमें कभी डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू। तो वेद व्यास जी अपने उस आश्रम में, बद्री का आश्रम में, जिसको शम्या प्रास कहा जाता है, वहां पर क्या होता था, सारे विश्व के जिज्ञासु, विद्यार्थी, ऋषि मुनि सब आते थे, क्योंकि वेद व्यास जी भगवान की शक्तियां विश्व अवतार थे, तो उनके पास आते थे अपनी जिज्ञासाएं लेकर, और बहुत बहुत वहां पर कृष्ण कथा होती थी, शास्त्र के विषय में बात होती थी सदैव कंटिन्यूस। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है ना सत्र वर्धनम, इसका मतलब होता है कभी भी भक्ति डिसकंटिन्यू नहीं होती थी वहां पर, सदैव वेद चर्चा होती थी, ब्रह्म चर्चा होती रहती थी। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं हर एक जीव के जो काम होते हैं, जैसे ऑफिस में उसमें क्या होता है संडे को आपको छुट्टी है, स्कूल में बच्चे जाते हैं उसमें भी क्या होता है समर वेकेशन आगे की जाओ अभी 2 महीने आपको आराम करना, और दूसरे भी कोई कार्य होते हैं उसमें क्या होता है आपको वीकेंड मिलता है, छुट्टी मिलती है। मगर आध्यात्मिक जीवन में छुट्टी की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे जितने भी कार्य हैं उनमें छुट्टी क्यों दी जाती है, क्योंकि जीव का जो दिमाग है ना वो थक जाता है, वो चाहता है कि अब मुझे एक दिन रिलैक्स होने के लिए मिले। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भगवान की भक्ति, क्योंकि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, तो भगवान की जब वास्तविक सेवा में जीव आता है, अपना वास्तविक कार्य करता है, तो उसे थकान नहीं होती बल्कि उसे आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। तो स्कूल में वेकेशन होती है, कॉलेजेस में भी होती है, परंतु मंदिर के पुजारी को कभी भी वेकेशन नहीं मिलती कि भाई ठीक है आप ऐसा करो संडे को आप आराम करना, आप पूजा के लिए नहीं आना। अगर किसी भक्त को ये बोल दिया जाए कि आप है ना संडे को भगवान की सेवा करने के लिए नहीं आना, उसी टाइम पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे भगवान मेरे से क्या दोष हो गया, आप मुझे एक दिन के लिए मेरी सेवा मुझसे ले रहे हो। तो बल्कि जिस दिन अगर कभी भगवान ना करे उसकी कभी तबीयत खराब होती है या फिर वो सेवा नहीं कर पा रहा होता है, तो उस दिन उसको इतना दुख हो रहा होता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये भक्ति का आनंद है कि दूसरी सारी सेवाओं से निवृत्त होकर हम रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन यदि भक्ति करने का अवसर किसी तरह से हमसे छिन जाता है, कभी हम श्रवण नहीं कर सकते, कभी हम अध्ययन नहीं कर सकते, कभी हमारा जप कंप्लीट नहीं होता, तो मेंटली हम इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कृष्ण क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं भक्ति कर पा रही हूँ, आज क्यों मेरा दिन इतना व्यर्थ गया। तो भक्ति जो होता है वो उस भक्ति में इतना आनंद महसूस करता है कि वो सदैव करना चाहता है। उसी तरह से भागवतम के लिए भी जैसे हम पढ़ते नित्यम भागवत सेवया, सदैव भागवतम, वास्तव में ये बड़ी कृपा होती है गुरुजनों की, कृष्ण की, कि भगवान की असीम कृपा है कि जो मति है जो भौतिक चीजों में ही सदैव लगी रहती है जीवों की, लेकिन यदि किसी की मति शास्त्र में लग जाए, शास्त्र को श्रवण करने में, भगवान के पवित्र नाम का जप करने में यदि लग जाए ना, तो ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत ये समझो सबसे बड़ा कृष्ण का हमारे ऊपर रिवार्ड है ये कि हम भगवान, ये वरना ये बुद्धि ये मति हमसे ऐसे ऐसे कार्य कराती है, ये मन इतना विचलित कराता है जीवों को कि बारंबार नरक में भी उनको जाना पड़ता है इसके कारण। लेकिन यही मति यदि शास्त्र श्रवण करने में, भागवतम को श्रवण करने में या भगवान के जप करने में लग जाए, तो यही मति हमें समस्त दुखों से छुटकारा दिलाकर कृष्ण को प्राप्त करा सकती है। तो भक्त जो होता है वो चाहे कहाँ भी चला जाए, भले उसका देश बदल जाए कि आज पाकिस्तान में है कल इंडिया में चला जाए या किसी और जगह पे चला जाए, भले समय बदल जाए कि भाई अप्रैल है, मई हो गया, जून हो गया, इसे समय भी परिवर्तित होता है, परंतु भक्त का कार्य कभी परिवर्तित नहीं होगा। वो किसी भी जगह पर जाएगा, आज मेरी 16 माला कंप्लीट नहीं हुई, अभी तक मैंने लेक्चर नहीं कंप्लीट किया है, अभी तक मुझे श्रवण भी करना है, अभी मतलब उसको पता है अभी मुझे भगवान को भोग लगाना है, अभी तक ये प्रसाद बनाना है, किधर भी चला जाएगा ना उसकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी, उसका कार्य चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि वो कार्य उसका वास्तविक कार्य, उस कार्य से उसको अलग कर दिया जाए अगर भक्त को, तो उसकी उसका महत्व खत्म हो जाएगा, वो भक्त नहीं रहेगा ना फिर। तो यही होता है आश्रम में। यहाँ पर जैसे बताया है ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम। आजकल लोग समझते हैं कि कोई साधु होगा वो आश्रम है ना उसका बनाएंगे अपने लिए आराम की जगह, कि वहाँ
वहां पर टिका रहेगा, कोई उसको निकालेगा नहीं, ऐसा होता है उसका आश्रम। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी बताते हैं कि आ का मतलब होता है कंप्लीट, जैसे यहाँ पर कंप्लीट तौर पर श्रम हो, श्रम का मतलब होता है स्ट्रगल। किसके लिए श्रम हो? भगवान को पाने के लिए। अर्थात जीव जहाँ पर कंटिन्यूअस श्रम करते हैं, जीवन भर श्रम करते हैं, किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। आश्रम शब्द कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा एक बिल्डिंग खरीद, हमें ऐसा लगता है ऋषिकेश में या वृंदावन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो हम बोलते हैं देखो इसका आश्रम कितना अच्छा है, इसका आश्रम। आश्रम का श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। कि अगर कोई भक्त अपनी भक्ति में विकास करना चाहता है, आध्यात्मिक विकास करना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक ऐसी जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पर ऐसा वातावरण हो कि वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ सके। और सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर यहाँ पर जो जगह बताई गई है कि आश्रम ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमी तटे, तो सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर उसका स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है। और वहां पर शम्यप्रास आश्रम में वेदव्यासी का आश्रम है, शम्यप्रास नाम का वेदव्यासी का आश्रम है। कहां पर है? सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर एक सुंदर सा आश्रम है जहां पर क्या होता है, आध्यात्मिक विकास के लिए सदैव कंटिन्यूअस ऋषिणाम सत्रवर्धनम, जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सदैव प्रयास करते रहते हैं। अभी हालांकि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि वेदव्यास जी वास्तव में ग्रस्त थे, उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है, वो ग्रस्त थे लेकिन ग्रस्त होते हुए भी वहां पर रहकर वो आश्रम की तरह रहते थे। आश्रम का मतलब है वो सदैव वहां पर श्रम करते थे। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं आश्रम वह स्थान है जहाँ पर आध्यात्मिक संस्कृति यानी प्रगति सर्वोपरि होती है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का हो। ये नहीं है कि वो तपस्वी है, तपस्वी बन के बैठा हुआ है और वहां पर बैठ के मजा कर रहा है तो वो आश्रम नहीं हुआ। लेकिन एक गृहस्थ है और अपने घर में बैठकर भी, भले वो गृहस्थ है, बच्चे भी हैं, घर में बैठकर भी यदि वो सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है, कथा हो रही है, संकीर्तन हो रहा है, विग्रह सेवा हो रही है, शास्त्र अध्ययन हो रहा है, तो वो आश्रम है। आश्रम का मतलब होता है कंटिन्यूअस भगवान को प्रसन्न करने के लिए जहाँ पर श्रम किया जाए। और जो हमारे ये चार आश्रम है, जैसे चार वर्ण होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण है ठीक है, और चार आश्रम होते हैं, कौन से? ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यासी। अब ब्रह्मचर्य में देखो क्या होता है, स्टडी की जाती है, शास्त्र अध्ययन किए जाते हैं, वेद पढ़े जाते हैं, भागवत और भगवद गीता को सीखा जाता है, ये ब्रह्मचर्य। आश्रम में यह परिश्रम करना अनिवार्य, अगर नहीं कर रहे हैं, अगर कोई मतलब 25 साल तक जीव ब्रह्मचारी होता है, अगर वो अपने शास्त्र को नहीं पढ़ रहा है तो समझो उसकी आगे की लाइफ जो है वो सत्यानाश होने वाली है, वो कुछ नहीं कर सकेगा गृहस्थ आश्रम में, वो कभी भी उसको सही तरह से फॉलो नहीं कर पाएगा। ब्रह्मचर्य अवस्था में यानी कि ये हमारी ड्यूटी है कि जब बच्चा पैदा होता है, जिस तरह से उसको स्कूल में भेजते हैं मार पीट के, भाई 2.5 साल का हो गया आप तुम्हें स्कूल जाना है, उसी तरह से उसको आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी है हमें, भागवतम और भगवद गीता भी उनको सिखाना है। तो ब्रह्मचर्य में शास्त्र अध्ययन किया जाता है, वो एक बहुत बड़ा आश्रम है, यहाँ पर श्रम किया जाता है, 25 साल तक आपको स्टडी करनी है, शास्त्र अध्ययन करने, कोई है ना मतलब जो होते हैं ना अपोजिट सेक्स वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, कंटिन्यूअस पूरा ध्यान जो है वो कहाँ पर लगाना है? शास्त्र में। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, गृहस्थ तो वैसे ही आश्रम है यानी कि जो सदैव वहां पर स्ट्रगल ही होता है, क्या होता है कि मैं कैसे कमाऊं, बच्चों का ख्याल रखना है, घर को घर बीवी है, बच्चे हैं, मेहमान आते हैं, माँ बाप हैं, उन सबको पालना, मतलब गृहस्थ तो है ही परिश्रम की जगह। और उसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में क्या तपस्या की जाती है ना सारे, हालांकि वो घर के साथ रहता है लेकिन फिर भी तपस्या करता है, सदैव भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षण नहीं होता उसका, घर में रहते हुए भी वैरागी का जीवन। और उसके बाद संन्यास होता है जिसमें सदैव भगवान पे ही अपना मन लगाना पड़ता है, भगवान को समझने के लिए, भगवान को प्रेम करने के लिए ही परिश्रम किया जाता है। इसलिए शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है ना, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, यानी कि हर जगह पर क्या करना है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति समान रूप से रहती है कि वहां पर क्या करना है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको कार्य करना है। इस आश्रम में आपको इसलिए भेजा गया है, सारे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी एक ही जीवन लक्ष्य परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित है। आप चाहे किसी भी आश्रम में हो, आपको कार्य करना है, आध्यात्मिक कार्य करना है ताकि आप भगवत प्राप्ति कर सको। अतएव जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है उनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचर्य कोई कम है, ये सारे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक बराबर है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। अब किस आश्रम में आपने कितना वैराग्य उत्पन्न किया, यानी आसक्ति भौतिक वस्तुओं से हटाकर हरि चरणों में कितनी आपने लगाई है, केवल इतना ही है। बाकी किसी आश्रम में कोई ये नहीं है, आप किसी भी आश्रम में रहकर कृष्ण प्रीति को प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हो। सारे सन्यासी अपने व्यावहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। आप सन्यास आश्रम को बहुत ज्यादा महत्ता दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये है क्योंकि सन्यासियों ने अपने वैराग्य को उत्पन्न किया है ना। अब भौतिक वस्तुओं की ओर, भौतिक व्यक्तियों की ओर, अपने रिलेटिव्स की ओर उनका कोई आकर्षण नहीं, इसीलिए सन्यास आश्रम को महत्व दिया जाता है। लेकिन यही कार्य यदि आप गृहस्थ आश्रम में रहकर करते हो, मतलब इतना आसक्ति नहीं हो रही, अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तो फिर समझो वो गृहस्थ भी बहुत ज्यादा सम्मान के लायक है। लेकिन अगर कोई सन्यासी है लेकिन फिर भी भौतिक वस्तुओं की ओर यदि उसकी बहुत ज्यादा तीव्र इच्छाएं हैं प्राप्त करने की, तो फिर वो सन्यासी उस गृहस्थ से कहीं कम दर्जे का सन्यासी हो। यानी कि वास्तव में सम्मान किस चीज को मिलेगा, वैराग्य को मिलेगा, कि आपका भौतिक वस्तुओं की ओर से कितना वैराग्य है और हरि चरणों में कितनी प्रीति है। वरना कोई भी आश्रम जो है वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वरना सिर्फ खाली आश्रम इसलिए महत्वपूर्ण है कि भाई ये सन्यासी इसलिए महत्वपूर्ण है या ये गृहस्थ है, तो इसकी कोई महानता नहीं है। तो आगे बताते हैं, तो जैसे शौनक ऋषि ने पूछा था कि नारद जी के चले जाने के बाद बादरायण ऋषि ने क्या किया, तो सूत जी बता रहे हैं कि वो अपने आश्रम में थे, वेदव्यास जी, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्य प्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धन, जहां पर सदैव सत्रवर्धन होता था। कंटिन्यूस क्या होता था, ऋषि लोग आते थे, जिज्ञासु लोग आते थे और भगवान के विषय में चर्चा होती थी। तो उस टाइम पर किया क्या, आगे बोलते हैं, तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो भद्रीश बदरीशंड मंडिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणीधद्यो मनः स्वयं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीषण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणितद्यो मनः स्वयं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासौ बदरी षण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणीदद्यौ मनः स्वयं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणीदद्यौ मनः स्वयं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणीदद्यौ मनः स्वयं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणीदध्यौ मनि मनः स्वयम्। शब्दों का अर्थ, तस्मिन् स्वे आश्रमे व्यास, तस्मिन् मन उस स्वे अपनी आश्रमे कुटिया में व्यास व्यासदेव बद्री षण्ड मंडिते, बद्री मतलब बेर, षण्ड मतलब वृक्ष, मंडिते मतलब घिरा हुआ, आसीनोप मतलब बैठे हुए, उप उपप्रश्य मतलब जल का स्पर्श करके, प्रणिदध्यो मनः स्वयं, प्रणिदध्यो मतलब एकाग्र किया, मनः मन स्वयं अपने आप में। अनुवाद, उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील वेद व्यास जी शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। अपने गुरु श्रील नारद मुनि के आदेशानुसार वेद व्यास जी ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। यहाँ पर बता रहे हैं उस जगह के बारे में, तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो। तस्मिन् का मतलब बताया उस जगह पर, जहाँ पर आश्रम कौन सा था उनका, बद्री षण्ड मंडिते, यानी बेरों के वृक्षों से उनका जो आश्रम था वो पूरा घिरा हुआ था। और उन्होंने क्या किया, आसीनोप उपस्पृश्य, वो आसीन हो गए एक जगह पर बैठ गए। उपस्पृश्य उसका मतलब है कि उन्होंने जल मतलब स्नान किया था, पहले जल से आचमन किया था, अपने आप को पवित्र किया था। और प्रणिदध्यो मनः स्वयं, प्रणिदध्यो का मतलब होता है स्थिर कर दिया, यानी कि अपने मन को स्थिर कर दिया। क्या क्यों किया, क्योंकि नारद मुनि जी के आज्ञाओं पर अपने मन को एकाग्र किया कि अब कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, अब स्थिर हो गया भगवान के श्री चरणों में, भगवान श्री कृष्ण में। स्थिर का मतलब होता है अपना जो मन ये विचलित हुआ है, हो रहा है, जो कहीं कभी किधर सोच रहा है, कभी क्या सोच रहा है, कभी क्या सोच रहा है, उस मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना, इसको बोलते हैं प्राणी दध्यो, यानी कि एकाग्र कर देना मन को। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, कि अपनी बुद्धि को एक जगह पर स्थिर करना, उसको बोलते हैं प्राणी दध्यो मनः स्थितम्, अपने मन को और बुद्धि को कृष्ण की लीलाओं में एकाग्र। क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा ना, तो बिखरे हुए मन से जो कुछ कभी क्या सोच रहा है, कभी क्या सोच रहा है, हम अपने चित्त को भगवान की लीलाओं में एकाग्र नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि अब वेद व्यास जी समाधि में स्थित हो गए थे। समाधि में क्यों स्थित हो गए थे, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें ये आदेश दिया था। आपको याद है हमने पढ़ा था 1.5.13 में नारद मुनि ने वेद व्यास जी को कहा था, अथो महाभाग भगवान मोधिक शुचि शवा सत्य रतो जितव्रत उरु क्रमस्या खिल बंध मुक्त ये समाधिनानुस्मरतत् विचेष्टितम्। कि क्योंकि आप महान हो, आप अगर भगवान की लीलाओं के विषय में उरु क्रमस्य खिल बंध मुक्त, उन भगवान के लीलाओं के विषय में यदि आप लिखोगे जिनको पढ़कर समस्त जीवों के बंधन मुक्त हो जाएंगे, तो उनको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, आपको समाधि में स्थित होना पड़ेगा। जैसे बताया था कि अपने मन की मैन्युफैक्चर से आप अपने से नहीं, मतलब मन की कल्पना से नहीं लिख सकते। यदि आप मेडिटेशन में जाओगे, ध्यान लगाओगे, तो भगवान की कृपा से आप ना ऐसा कर सकोगे। तो फिर यही समाधि में स्थित होने के लिए, स्थिर होने के लिए, इसका अर्थ है कि भागवत, उन्होंने क्या बताया नारद मुनि को कि भागवत लिखते समय आपका मन एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र मन का क्या मतलब होता है कि मन को और कोई कार्य नहीं होना चाहिए, मन कहीं भी नहीं बिखरना चाहिए। इसी तरह से जब हम भागवतम को श्रवण कर रहे होते हैं, अभी देखो ये स्टोरी है, अगर इसको एज ए स्टोरी लेंगे ना हम, तो जैसे नारद मुनि की स्टोरी मैंने कल एक पूरी स्टोरी जो हमने इतने दिनों से हम पढ़ रहे थे वो मैंने 10 मिनट में आपको बता दी। उसी तरह से ये जो पांडवों का आख्यान अभी शुरू होगा ना, ये महाभारत हो जाएगा और ये द्रोण पुत्र को दंड मिलेगा, ये सब 5 मिनट की बात है, पूरा बताया जा सकता है महाभारत। लेकिन भागवतम पढ़ने का लाभ क्या है कि इसके एक एक शब्द को हम, इसके रस को चखें। मेरी पूरी इच्छा होती है कि भागवतम में लिखे हुए वेद व्यास जी के एक शब्द के साथ भी अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। भले मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, गुरु महाराज की कृपा से जितना पॉसिबल हो एक एक शब्द को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये स्टोरी नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि भाई उसके बाद ये हुआ उसके बाद, हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर पूरा भागवतम को पढ़ नहीं लोगे तब तक आपके हृदय में भगवत प्रीति प्राप्त नहीं होगी। भागवतम को स्पर्श कर दिया ना आपके हृदय में, जिस दिन ये इच्छा उत्पन्न हो गई ना कि मैं भागवतम पढ़ूंगा या श्रवण करूंगा, उसी दिन सद्यो हृदय वरुद्यते तकृति भी शुश्रूषुभित्तत्क्षणा, उसी क्षण आपके हृदय में कृष्ण प्रेम की प्रीति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। लेकिन खत्म नहीं करना, ये नहीं कि हमें भागवतम खत्म करके, उसी क्षण एक एक शब्द में प्रेम होना चाहिए भागवतम के। एक एक किसने कहा, वो कौन था, क्या कह रहा था, उसके आश्रम के बारे में, उस एक पत्ते के बारे में अगर बात हो रही है, एक वृक्ष के बारे में बात हो रही है, तो क्योंकि भागवतम का शब्द है इसके अंदर कुछ भी जुगुप्सित नहीं है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि तज्य है, एक एक शब्द प्रेम करने योग्य है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें स्टोरी पता चले, हमारा मकसद ये है कि हमारा हृदय पवित्र हो, और जितना हम उसको छान छान के मतलब एक एक चीज को रस लेके पिएंगे ना, तब हम लोगों का हृदय इतना स्थिर हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि भगवत प्रेम उसमें दिन ब दिन उछाले मारने शुरू हो जाएगा, कि कृष्ण प्रेम के विषय में हमें इतना प्रेम से जितना पॉसिबल है, हमारे अंदर भले इतनी अच्छी प्योरिटी नहीं है लेकिन जितना पॉसिबल है उतना तो हम कर सकते हैं ना। तो एक एक शब्द को हमें समझना है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मन जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक हम कृष्ण की लीलाओं के विषय में ना पढ़ सकते हैं ना बोल सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्राणी धद्यो मन स्वयं, अपने मन को एक जगह पर एकाग्र किया। जब आप एकाग्र होगे तभी ठीक ठीक से लिख सकोगे। श्री प्रभुपाद नारद मुनि ने उन्हें कहा था कि आपको समाधि में रहकर भागवतम लिखना है। समाधि नानु स्मर तद विचिष्टितम, समाधि में स्थित होकर भगवान की लीलाओं को लिखने का प्रयास करो। इसलिए भागवतम को वेद व्यास जी की समाधि की भाषा कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया था, समाधि में स्थिर होकर भगवान की लीलाओं को प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया था, क्लियर देखा था भगवान की कि क्या कर रहे हैं उस टाइम पर, क्या हो रहा है। इसलिए वेद व्यास जी लिख रहे थे और वो डायरेक्ट से उनको दिख रहा था कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ये कोई मनोमय कल्पना नहीं है, ये कोई माइंड कि ये बात नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, नहीं, वो साक्षात ऐसा होता जाता और वो लिखते जाते। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, पहले कहते हैं आसीनो उपप्रश्य प्राणी दद्यो मन स्वयं, अपने मन को स्थिर किया। और यहाँ पर श्री प्रभुपाल जी बता रहे हैं कि अपने गुरुशिला नारद मुनि के आदेशानुसार व्यास देव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। तो मन को एकाग्र करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले तो जल में स्नान किया, फिर उनका मन एकाग्र कैसे हो गया, मतलब सिर्फ इच्छा की तो एकाग्र हो गया या उसके लिए कोई क्रिया भी की उन्होंने? तो इसका उत्तर वेदव्यास जी कल देंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया। कृपया साथ रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छा कर सकूं। हरे कृष्ण।